Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sahanavavatu. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग तीन दिन के लिए, अभी कोई बता रहा था कि सब्स्टिट्यूट हैं, और इसे अच्छा लगा। वेद पाठ कैसे करना चाहिए हमें भी नहीं आता, लेकिन अच्छा वेद पाठ का उच्चारण है मीता बहन का, उच्चारण प्रोनसिएशन वेद पाठ। देखो संगीत गाना अलग है, मतलब संगीत का एक रिदम अलग है, अब वेद पाठ का रिदम क्या है, अवरोह आरोह में रहता है, उसका अपना एक अलग ही रिदम होता है। तो उन्होंने बताया कि सब्स्टिट्यूट हैं, तो हमने कहा मैं भी सब्स्टिट्यूट ही हूं, क्योंकि किसी के स्थान पे मैं भी आया हुआ हूं, रखा गया हूं भाई। तो तीन दिन के लिए महाराज जी थोड़ा बाहर गए हैं अयोध्या, अयोध्या से लौट करके आएंगे भगवान राम के दर्शन करके, फिर आप उनका दर्शन कर लेंगे तो राम का ही दर्शन हो जाएगा है? तो इस तीन दिनों में हमें कोई ग्रंथ लेना था, तो मैंने सोचा क्या लूं, पिछली बार तीन दिन का अवसर मिला था तो एक ग्रंथ लिया था भगवान शंकराचार्य का, याद होगा विज्ञान नौका, आप लोगों को काफी प्रभावित भी किया था वो ग्रंथ। भगवान शंकराचार्य जी का कोई भी ग्रंथ होता है ना, भगवान शंकराचार्य की एक विशेषता है, चाहे उनका एक श्लोक का ग्रंथ हो, चाहे पांच श्लोक का ग्रंथ हो, चाहे आठ का हो, चाहे हजार श्लोक का ग्रंथ हो, उनके निरूपण की इतनी कला बढ़िया है, कुछ नीचे से लेकर के ऊपर तक का अंतर्भाव, साधना से लेकर के समाधि तक का अंतर्भाव एक ही श्लोक में कर देते हैं। ये उनकी अपनी एक बहुत बड़ी विद्वता रही, एक निष्ठा रही, उनके भीतर का एक बहुत बड़ा कवित्व रहा। किसके भीतर? भगवान शंकराचार्य। अब भगवान शंकराचार्य जी ने हम लोगों को जो दिया है, हम अपनी इस परंपरा में जीवित हैं, उन्हीं की बड़ी कृपा है। आजू बाजू आप देख सकते हैं सब बौद्ध ही हो गए हैं, हम फिर से जीवित हो गए, अपनी धरोहर को हम बचा पाए, ये कृपा किसकी थी? भगवान शंकराचार्य जी की ही कृपा थी। उनके हम लोग इतने ऋणी हैं कि हम क्या उस ऋण को चुका सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिखे हुए ग्रंथों को हम लोग चिंतन मनन करते हैं, इसी से अपना भला कर लेते हैं, अब भी वो कृपा कर रहे हैं। तो एक ग्रंथ है धन्याष्टक। क्या है? धन्याष्टक। इस ग्रंथ में 9 श्लोक हैं, 8 नाम है, 9वां सार रूप में दिया है। तो धन्याष्टक पर विचार करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने दिन हैं? 3 दिन हैं, और 3 × 3 = 9 हैं। 3-3 श्लोक रोज करके 9 श्लोक तक पहुंचेंगे। देखो, कभी उसे किसी ने बताया, ग्रंथ हो चुका है, किसी ने किया है, कापी करा लेना। देखो, लेकिन हर व्यक्ति के करने का ढंग अलग अलग होता है। एक ही ग्रंथ होता है, एक ही गीता जी है। आप देखो, एक गीता जी आप पढ़ रहे हैं, कि कौन सी? संग्रहानंदी। इनके कहने का ढंग भगवान ही मालिक है। बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत बढ़िया लगी। कौन? संग्रहानंदी। संत ज्ञानेश्वरी भी है, वो भी गीता की व्याख्या है, लेकिन उनका कहने का ढंग सामान्य पब्लिक को कैसे समझ में आवे। लेकिन ये सामान्य पब्लिक के लिए नहीं है। कौन सी? संग्रहानंदी गीता विशेष लोगों के लिए है, सामान्य के लिए नहीं है। सामान्य के लिए तो गीता जी की व्याख्या साधक संजीवनी भी पढ़ सकते हैं, बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकते हैं, संत ज्ञानेश्वरी पढ़ सकते हैं, ये सब है। लोकमान्य तिलक की भी गीता है, उनकी भी पढ़ सकते हैं। कर्म प्रधान है, गौरपादा नहीं, क्या है, इस्कान वालों की, उनकी भी गीता है। प्रभुपाद की, उनकी भी गीता है, लेकिन उनकी गीता क्या है? भक्ति प्रधान है। लेकिन इनकी गीता पढ़ लो तो लगता है कि कुछ पढ़ना शेष है, रह नहीं गया है। किसकी गीता? संग्रहानंदी गीता। सच बता रहा है। ऐसे हर महापुरुषों का अपना एक अनुभव होता है, अपना एक बताने का तरीका होता है, और हमें 3 दिन में ही तत्व तक पहुंचना ही है, जीवन का लक्ष्य पकड़ना भी है। तो हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं इस पावन प्रांगण में। हमें गाना तो कम ही आता है, लेकिन हाँ, तज्ज्ञानम् प्रशमकरम् यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयम् यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धान्या भूय परमार्थ निश्चितेह शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ति। तज्ज्ञानम्, हम लोग बहुत ज्ञान जानते हैं। यहां संसार में देखो, सब ज्ञानी ज्ञानी है नहीं? सब ज्ञानी है। कोई यहां अपने आप को ज्ञानी मानता है क्या? शराबी व्यक्ति से कहो भी ना, तो वो भी अपने ज्ञान की चर्चा करता है। वो भी एक नत्था सिंह हुए हैं, नत्था सिंह इधर नहीं हुए हैं, एकदम टू कापी थे लाल बहादुर शास्त्री की तरह, भजन अच्छा बनाते थे, गाते थे, नत्था सिंह, हाँ पूरा मोटा है। हाँ, वो ऐसे कहते, जिसको देखो वही ब्रह्मज्ञानी बना फिरता है, जिसको देखो यहां वही ब्रह्मज्ञानी बना फिरता है। मैंने पूछा किसी शराबी से, तू शराब क्यों पीता है? तो शराबी ने जवाब दिया, क्या दिया? तुम अंगूर खाते हो, हम अंगूर का रस पिया करते हैं, बताओ बुरा क्या किया करते हैं? मैंने जिसे देखो वही ब्रह्मज्ञानी बना फिरता है। मैंने किसी से पूछा, तू जुआ क्यों खेलते हो? तो कहा, राजा नल और युधिष्ठिर ने जुआ खेला, मैं तो अपने बड़ों की परंपरा का निर्वाह किया करता हूं, बताओ बुरा क्या किया करता हूं? तो यहां देखो, सब लोग चर्चा किसकी करते हैं? ब्रह्म ज्ञान से नीचे से कोई उतरता नहीं है। और हमारी दृष्टि कहां लगी रहती है? तुच्छ विषय भोगों में। एक महात्मा बहुत बढ़िया बताते हैं कि एक चील है ना, उड़ती तो बहुत ऊंची उड़ान है, लेकिन उसकी दृष्टि कहां लगती रहती है? मांस के लोथड़े पे, सड़े हुए मांस में। ऐसे हम लोग ज्ञान की चर्चा तो बहुत ऊंची कर लेते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वही संसार के तुच्छ विषयों में, भोगों में। बताओ, वो ज्ञान किस काम का है? बताओ, वो ज्ञान तो हमारा ऐसा ही ज्ञान है जैसे कोई हाथी नहावे जाकर के, कहां? तालाब में। सुना ने सुना? आने के बाद वो धूल को अपने ऊपर डाल लेवे, ऐसा करती है हाथी भगवान जाने। सुना है शास्त्रों में ऐसा लिखा रहता है, नहाती तो एक घंटे बाद, हाथी का नहाना प्रसिद्ध है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो क्या करती है, धूल को अपने ऊपर डाल लेती है। तो बताओ उसका नहाना कोई सार्थक हुआ क्या? तो हम लोग ज्ञान की चर्चा तो बहुत ऊंची करें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ज्ञान का लेस उतरे न, हमारी दृष्टि संसार के तुच्छ विषय भोगों में ही दौड़ती जाए, उलझती जाए, बताओ उस ज्ञान का कोई फायदा हुआ क्या? कहते तज ज्ञानम, ज्ञान तो वही है। कौन सा ज्ञान है? कहते प्रसमकरम, समकरम नहीं प्रसमकरम। सम माने शांत कर देवे, और प्र माने क्या हुआ, प्रतिष्ठेण, अच्छी तरह से शांत कर देवे। कोई भी परिस्थिति, कहते हैं कितना भी विषय की मात्रा होवे, लेकिन इंद्रियों में किसी भी प्रकार का कोई उछल कूद अशांति आवे न, किसके लिए, यद इंद्रियां राम। देखो हमारी इंद्रियां विषय भोगों को देख करके क्या होती हैं, चंचल हो जाती हैं, अंतर्मुख हो जाती हैं, दौड़ उठती हैं। तो आंख रूप के पीछे पागल है, कान शब्द के पीछे, जीवा रस के पीछे, घ्राण इंद्री गंध के पीछे, और इन सब इंद्रियों के चक्कर में कोई न कोई फंसा है। बड़े बड़े यति वृंद भी फंस गए, नहीं फंसे। आप देखो गंध सबसे स्थूल विषय है, इन गंध के वशीभूत हो गए कौन, पराशर ऋषि अथवा दूसरे शांतनु राजा। शांतनु गंध के पीछे ही तो इतना बड़ा कष्ट उठा लिया, रस के पीछे पागल हो गए कौन, सिंगी ऋषि। रस के पीछे कौन पागल हुए, सिंगी ऋषि, नहीं कथा मालूम है, अरे बाप रे। सिंगी ऋषि रहते हैं अपने पिता के साथ जंगल में, कभी मतलब मस्ती, एक जैसे कहते हैं ना अवधूत वृत्ति में, अपनी मस्ती में दुनिया की कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, जैसे जंगल में पक्षी विहरण करता है, हिरण के बच्चे विहरण करते हैं, ऐसे जंगल में अपनी मस्ती में रहा करते थे। इधर रोम देश में अकाल पड़ गया, रोम देश में क्या हुआ, तो वहां के ब्राह्मणों ने कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि को इस भूभाग पे ले आया गया तो बारिश हो जाएगी, लेकिन श्रृंगी जैसे तपस्वी ऋषि को ले आने की हिम्मत कौन करेगा, कौन कर सकता है हिम्मत, कब सनक जाए, बाबाओं का गुस्सा भी भगवान मालिक है, दुर्वासा ऋषि कब सनक जाए कोई पता है क्या। तो उसे निवृत्ति प्राण वाला व्यक्ति ज्यादातर देखा क्रोधी भी दिख जाता है, मैंने देखा जो बहुत ज्यादा निवृत्ति वाला होता है ना, उस ज्यादा क्रोधी भी हो जाता है। तो कब वो श्राप किसको दे दे में कोई भरोसा नहीं, तो पंडितों ने तो सरेंडर कर दिया कि हम तो उनको ले आने में समर्थ है नहीं। तो वहां की कुछ वेश्याएं आई, अब वेश्याओं ने कहा मैं ले आऊंगी, पंडितों ने तो उनको बड़ी हंसी उड़ाई, उपहास किया। लेकिन फिर जो वेश्याएं, जब श्रृंगी ऋषि के पिताजी कहीं चले जाएं आजू बाजू, तो वहां जाएं कभी गीत गावें, कभी थोड़ा नाचें, कभी कुछ खिलावें, तो आए आखिर हमारे जंगल में तो ऐसे जानवर है नहीं, वो औरत जाति जानते नहीं थे औरत कौन सी बला होती है, वो औरत को देख करके वो सोचते थे हमारे यहां तो ऐसे कोई जानवर है ही नहीं, ये किस देश के जानवर आ गए हैं, कहां आ गए हैं। तो एक दिन उन्होंने रसगुल्ले वगैरह कुछ लेके गए, फल लेके गए, तो कहा हमारे यहां जंगल में इतने मीठे फल होते ही नहीं है, कहा आप चलो तो मैं अपने यहां के फल आपको दिखाती हूं, वहां इतने मीठे मीठे फल लगते हैं। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमें तो 9 श्लोक पूरा करने भी हैं, हा? तो वहां से आप कहानी ज्यादा पढ़नी हो तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण में सिंगी ऋषि का अच्छा चरित्र दिया है। तो वहां से क्या कहते हैं कि कौन, सिंगी ऋषि उन वेश्याओं के साथ नीचे आए, और जैसे ही नीचे आए तो झमाझम बारिश हो गई। राजा रोम को पता चला, चली गया कि निश्चित ही श्रृंगी ऋषि नीचे आ चुके हैं, तुरंत अपनी कन्या शांता को ले गए और उसके गले में जयमाला जला दिया और कहा महाराज जो गलती किया हो उसको माफ कर देना। पहले माफी मांग लिया, अब बताओ श्राप भी नहीं दे सकते हैं। अग्निहस्थ बनकर के फंस गए। कौन? सिंह ऋषि। अब उस जो सिंह ऋषि ब्रह्मानंद के आनंद में आनंदित तो होते थे, वही सिंह ऋषि को अब पुत्रेष्ठी याग कराना पड़ रहा। सोच लेना किसके लिए? दशरथ के लिए। तो बताओ ब्रह्मानंद कहीं न कहीं व्यवहार में आकर के है, तो देखो जीवन मुक्त तो क्या कहते हैं विदेह मुक्त तो है ही, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए तो कहीं न कहीं संसार में जाने के बाद कुछ न कुछ अवरोध तो आ ही जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में ही कहा गया है शरीर के साथ संबंध बना करके यदि रहोगे तो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। न वैस शरीर से प्रिया रप्रियो रपहति अस्ति। शरीर के साथ हो तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां, और जब शरीर के साथ है तो शरीर के संबंधियों के साथ रहोगे तो उनकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? तो इसलिए जो जीवन मुक्ति का आनंद भोगना चाहिए था उससे क्या हो गए? वंचित हो गए। किसके जाल में? ये जिह्वा जो है ना कहां कहां हमें फंसा देती है, ठीक ना? ऐसे हर महापुरुषों को देखो, स्पर्श के जाल में कोई फंस गया नहीं, रूप के जाल में कौन फंस गए? विश्वामित्र महाराज मेनका के रूप में ही तो फंसे, क्योंकि स्पर्श तो उनको पहले से ही था, गृहस्थ से इधर आए हुए थे तो स्पर्श तो था ही, लेकिन रूप के जाल में फंस गए। और इन तीनों का अंतर्भाव स्पर्श में हो गया। किसका? शब्द का भी नहीं, गंध का भी, इस रस का भी, और रूप का भी अंतर्भाव सब कहां मिल गया? स्पर्श इंद्रिय में। और शब्द में हमारे कौन फंस गए? नारद जी। शब्द में नारद जी तो फंसे ना, जब सारी अप्सराओं को जीत लिया तो अंतिम एक अप्सरा आती है रंभा, कहती है नारद जी महाराज आप जैसा योगी तो मैंने किसी को देखा ही नहीं, एक शंकर जी हैं योगी, मैंने सुना तो है शंकर जी का भी नाम है, लेकिन उन्होंने तो काम को जला दिया, काम को रखा ही नहीं जला ही दिया, अरे आप तो काम के विषयों के रहते रहते भी आपके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, तो आप तो शंकर से भी क्या है? उत्कृष्ट हैं। अब बस नारद जी को क्या आ गया? अभिमान आ गया, मेरा जैसा कोई है ही नहीं। और उस अभिमान के कारण नारद जी को भी कितना दुखी बाद में होना पड़ा, कितना लज्जित तो होना पड़ा। किस विषय? हम लोग भी तो वही शब्द के चक्कर में फंसते नहीं फंसते बताओ। अरे एक स्वामी जी आते थे विशुद्धानंद जी महाराज, है नहीं आप लोग तो बड़े सुने हैं, वो सीधे कहते हैं ये भगत लोग ने बाबाओं को तीन काम कराते हैं, खिला के फुला के और बुला के। क्या कहते हैं? खिला के, महाराज जी थोड़ा सा खा लो, मेरे हिस्से में तो खाए नहीं, आप मेरे हाथ से तो लिए ही नहीं, बस खाए खाए महाराज जी की हालत है, खिला के फिर फुला के। महाराज जी आप जैसा प्रवचन ने तो किसी का है ही नहीं, आपने तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये महाराज जी फूल गए, वाह मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, उस्मानी हो गए। और तीसरा बुला के, महाराज जी कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो, बस यही तीन काम करते करते उनका भी जीवन चले जाता है और अपना जो करना चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं, बस खिला के फुला के बुला के ही फंस जाते हैं। तो हम लोगों को भी तीन विषय हैं। तो कहने का भाव है तद ज्ञानम, ज्ञान वही है जो प्रसम कर्म अच्छी तरह से शांत कर देवे। अच्छी तरह से माने क्या हुआ? कोई भी विषयों का आकर्षण वह विषय किसी भी रूप में किसी भी तरह से आ जाए, लेकिन हमारी इंद्रियों में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप आवे न, तो समझ लेना आपने ज्ञान को प्राप्त किया है, अन्यथा ज्ञान अभी नहीं मिला है। सच बता रहा हूं, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। क्या है? कहो महाराज जी ज्ञान क्या है? कहता यही तो ज्ञान बताया जाता है कि सुख स्वरूप तुम्हारा अपना स्वरूप है, संसार के विषयों में सुखाभास जैसा है। सुखाभास माने सुख जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में सुख है ही नहीं। अरे आपको ये पता चल जाए कि वहां सुख जैसा लगता है, सुख है ही नहीं, तो आप उस विषय में जाओगे क्या, मेरे को बता दो। मृग मरीचिका का जल जब जल जैसा दिखता है लेकिन खूब प्यास लगे, तो बताओ क्या वहां लोटा लेकर के कमंडल लेकर के पानी भरने जाएंगे क्या? बल्कि जो जाएगा ना उसको देख के हंसेगा भी है, जा रहा बेवकूफ, वहां मिलेगा कुछ है नहीं, लेकिन दौड़ा जा रहा थकावट लेके आएगा, यही तो करेगा नहीं करेगा। अभी भी हम यदि संसार के विषयों में दौड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं ज्ञानवान तो सही बताऊं हुआ नहीं है, बस हम ये मान लेते हैं ज्ञानाभास हो गया है। क्या है? ज्ञानाभास, ज्ञान जैसे लग रहा है लेकिन वास्तव में ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी हमारी विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि है वह क्या समाप्त हुई? क्या हम सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हम ही हैं, इसका एहसास हुआ क्या? यदि मुझे अपनी आनंद रूपता का एहसास हो गया होता तो संसार के विषयों का दौड़ अपने आप क्या हो जाती? लेकिन सही बताऊं हम, इसलिए मैं नहीं तुम नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं, हम माने तुम और मैं दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो हम सब इसी में ही हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी संसार का यह आकर्षण नहीं छूट रहा है। हम इन मालाओं में ही सुख देखते हैं, ऊंचे पद में ही सुख देखते हैं, नहीं, बहुत मुश्किल काम है सच बताऊं। लेकिन ज्ञान हुआ सा लग रहा है कि ज्ञान हो गया, लेकिन अभी हमें तो लगता है ज्ञान का एक तिनका भी नहीं आया है। चाहे हम लोग अपने ही खुद देखें, धन का आकर्षण हो, पद का आकर्षण हो, दौड़ का आकर्षण हो, सब हो ही रहा है, कहां हमारी महत्व बुद्धि? रोज देखते हैं वो मर गया, वो मर गया, वो इतना छोड़ गया, वो इतना छोड़ गया, कोई साथ ले नहीं गया, लेकिन फिर भी हमारी दौड़ है, उसी को इकट्ठा करने में लगी हुई है जिसको हमें छोड़ के जाना ही है। बताओ ज्ञान किस काम का होगा मेरा? वो तो बस ज्ञान बोलने बुलवाने काम आने वाला है, लेकिन जीवन में उतारने वाला ज्ञान है ही नहीं। सर बताओ कभी विचार करके देखो हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज्ञान कहां तक पहुंचा है? हिला देता है भगवान शंकराचार्य की एक एक वाक्य, हिला देते हैं व्यक्ति को, सोचने को मजबूर कर देते हैं, हम कर क्या रहे हैं। तज्ज्ञानम प्रशम करम यदि इंद्रियाणाम, ज्ञान वही है जो इंद्रियों की चंचलता को पूरी तरह क्या कर देवे, शांत कर देवे। ज्ञान माने वही, ज्ञान क्या है? संसार के विषयों में सुख जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में सुख है ही नहीं। आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसों बार देख करके अशांति का अनुभव किया है, लेकिन फिर भी शायद इस विषय में सुख नहीं होगा, वो दूसरा वाला विषय में मिल जाएगा, तीसरा में मिल जाएगा, और सारी जिंदगी हम दौड़ते रहते हैं और सुख का ले समाप्त मिल पाता नहीं। कहते उस ज्ञान के द्वारा जानना क्या है? तज्ज्ञेयम् यत् उपनिषत्सु निश्चितार्थम्। कहते जानने योग्य विषय क्या है? तो पहला तो जानने योग्य विषय ये नहीं है कि विषय दुख रूप है, तो ज्ञान हुआ कि विषय दुख रूप है, वहां हटना है, हट करके भी कुछ जानना है ना, तो जानने योग्य विषय क्या है? कहा यत उपनिषत्सु निश्चितार्थम, जिसका निश्चय उपनिषदों में कर लिया गया है वास्तव में वह ही जानने योग्य विषय है। उपनिषदों में क्या निश्चय किया गया है? अभी गीता जी आपने पढ़ा ही है, गेयम, गीता जी का भी 12वां श्लोक 13वां अध्याय का पढ़ा है, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतमस्मृते अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असद उच्यते। जानने योग्य वही विषय है जो मैं अब कहने जा रहा हूं, भगवान कहते हैं उसको जानने से फायदा क्या होगा? कहते यज्ञात्वा अमृतमस्मृते, जिसको जानने के बाद व्यक्ति को अमरता की प्राप्ति हो जाती है, अमरता माने मरने का भय समाप्त हो जाता है। वह कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म है, वह कैसा है? अनादिमत है, आदि से युक्त नहीं है। उसका कब आरंभ हुआ है ये नहीं कह सकते हो। वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, का सत, उसको न सत बोल सकते हो न असत बोल सकते हो। आगे भी उसी ब्रह्म का निरूपण किया गया है, सब कुछ ब्रह्म है, एक सत्ता उस रूप में हमें जानना है, यही जानने योग्य विषय है। ब्रह्म ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म की सत्ता से पृथक दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, यही जानने योग्य विषय है, इसको हम जाने। लेकिन किसमें जाने, यहां दो चीजें, जिसे हर सूत हर कपड़े में, चाहे कमीज हो चाहे पगड़ी हो चाहे दुपट्टा हो अथवा मोजा हो, क्या देखना है, सूत के देखना है। तो ऐसा जितनी उपाधियां हैं उन उपाधियों के भीतर हमें किस सत्ता को पहचानना है, उस ब्रह्म सत्ता को जानना, वही जानने योग्य है। अपनी दृष्टि को वही रखाना है, नाम रूप जाति गुण क्रिया को क्या करना है, उपेक्षा कर देना है। ये तो व्यवहार के लिए आरोपित कर लिए गए हैं। अरे किसी का ये नाम नहीं रख लो, ये नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आजकल नाम की बड़ी लड़ाई है, क्या करोगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, महाराज जी काम नहीं चल रहा है, मेरा नाम है रामचंद्र है, काम नहीं चल रहा था, ज्योतिषी बताएगा अभी तक लिखते हो आर ए एम, अब लिखना शुरू कर दो आर डबल ए एम, तुम्हारा काम चलना शुरू हो जाएगा। हे भगवान, क्या लड़ाई चल रही है, बड़ा मुश्किल है। कभी कभी ज्योतिषी लोग तो नाराज हो जाएंगे मेरी प्रवचन को सुनकर के, लेकिन बड़ा बवाल चल रहा, नाम की लड़ाई, रूप की लड़ाई। अब आप रूप की लड़ाई कैसे हम कहेंगे कौन सी वस्तु सुंदर है, सुंदरता का निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं, वस्तु सुंदर है मेरे बता दो, कुछ है आपके पास सुंदरता का एक मापदंड है क्या? अरे जो वस्तु एक व्यक्ति को सुंदर लगती है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को क्या लगती है, एकदम असुंदर लगती है। बताओ कैसे कहोगे वस्तु सुंदर है अथवा यह असुंदर है। अब तत्वतः विचार किया जाए तो सबके शरीर में माल तो वही भरा भरा है, दोनों क्या सुंदर है, क्या सुंदर है मेरे बता दो। इसलिए मेरे भाई रूप को भी छोड़ दो, नाक ऊंची हो या नीची हो सांस लेने काम आएगी, आंख नीली या पीली हो देखने काम आएगी, और देखने काम नहीं आवे तो नीली काली पीली हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब व्यवहार चलाने के लिए हमने अंगों का एक, लेकिन सारा संसार रूप के पीछे पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा है। अरे रूप चाहे वस्त्रों का चाहे जिसका भी रूप हो, जाति ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है, ये नीच है ऊंच है। अब इस शरीर में पांव शूद्र है, पांव को कटवा दो, अरे पांव के भीतर भी वह ब्रह्म उसी रूप में सत्ता दे रहा है जिस सत्ता से सर में सत्ता दे रहा है। इसे शरीर का छोटा से छोटे अंग की भी उतनी ही कीमत है जितनी बड़े से बड़े अंग की कीमत है। हमारे दुखों का तो यही चारा नो है। आपके पास कितने लाख की कार खड़ी है, अब तो बोलने नहीं है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, स्टेयरिंग को घुमाने वाला एक नट न हो गए, अथवा ब्रेक वायर ब्रेक को दबाने वाला एक रुपए का नट न हो गए, ढीला हो जाए गिर जाए, अब बताओ आपकी 50 लाख की कार क्या करेगी, बताओ एक रुपए की नट की कार। तो एक रुपए के नट की भी उतनी ही कीमत है जितनी कीमत आपकी उस पूरे कार की है, ये समझ लेना। नहीं तो एक रुपए के नट न होवे न तो पूरी कार क्या है। लेकिन हम लोग तुलना हमेशा करते रहे, अच्छा है बुरा है, हम तो कहते हैं कि बुरा भी बहुत अच्छा है,